नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलवाना सरकार का ध्येय। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली, 3 लाख से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी, श्रीगंगानगर और दौसा में हल्की बरसात। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज श्रीगंगानगर में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। उन्होंने नई धान मंडी में किसानों को बेचान पर्ची देकर एमएसपी पर सरसों खरीद कार्य की शुरुआत की। सरकार ने सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं चने की खरीद 5,650 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। सरसों खरीद के लिए 13,22,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। एमएसपी आधार पर 5,46,000 मीट्रिक टन चने की खरीद की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि खरीद का किसानों के लिए बैंकों में खाते में सीधा भुगतान समय पर निश्चित किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुकाबले सरसों खरीद के मूल्य में 900 रूपये की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखकर सरसों के लिए 5,950 रूपये प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रूपये प्रति क्विंटल एमएसपी, 5,46,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में करीब 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी और हमने एक साल में 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है।
राज्य में सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद कल से शुरू होगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज से इसकी शुरुआत हुई। इसके लिए किसानों ने 1 अप्रैल से पंजीकरण करवाया था। राजफेड के वाणिज्य महाप्रबंधक कार्तिक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 1,20,000 से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी किसान अपनी उपज बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि खरीद केंद्रों पर छाया, पानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। राज्य में सरसों और चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
किसान जो है अपनी गिरदावरी लाकर और जो भी उसका निकटतम जो उसका केंद्र है उसकी तहसील में वहां पर जाकर पंजीयन करा सकता है। अब तक लगभग 1,20,000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। इस बार हम नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से पूरे राज्य में खरीद कर रहे हैं। 522 केंद्र अब तक जो है हम बना चुके हैं। किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था, धूप से बचाव के लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था के लिए हमारे सारे जो उप रजिस्ट्रार हैं उनको फील्ड में निर्देश दिए जा चुके हैं और पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है। जैसे ही किसान की खरीद हो जाती है वेयर हाउस वगैरह में जमा करा के और तुरंत ऑनलाइन उनके खाते में भुगतान की भी व्यवस्था है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इसमें 3 लाख से ज्यादा बच्चों को राज्य के कुल 34,799 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ये लॉटरी जयपुर के शिक्षा संकुल में निकाली गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे वंचित और कमजोर तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए कई लोगों ने रूचि दिखाई है। है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए 261 एमओयू अनुमोदित किए गए हैं। इससे करीब 15,500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा।
राइजिंग राजस्थान का जो काम हुआ है तो उसकी मैं चर्चा करूं तो 261 एमओयू का अनुमोदन हो गया है। एमओयू हमारे स्कूलों के बच्चों के हित के लिए हुए हैं। 15,495 करोड़ की राशि का इन्वेस्टमेंट होगा और मार्च 25 तक 17 एमओयू जो की 24 करोड़ की राशि के धरातल पर आ गए हैं और जून 25 तक 18 एमओयू धरातल पर आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में विभाग मुस्तैदी से निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से अपने निवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्री हमदान को राजस्थान के महायोद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की प्रतिमा भेंट की। श्री मोदी ने उन्हें राज्य की विरासत, शौर्य और भाग्यशाली इतिहास के बारे में बताया, साथ ही चेतक के ऐतिहासिक योगदान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अश्व चेतक ने युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की थी। नौकार महामंत्र दिवस आज मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नौकार मंत्र दिवस पर नई दिल्ली में समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। इसका उपाय समावेशी दिनचर्या है जिसकी जैन समुदाय सदियों से पालना करता रहा है। प्रधानमंत्री ने नौकार महामंत्र के महत्व पर कहा कि यह विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है।
साथियों, नौकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सब पर राह दिखाता है, जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में नौकार मंत्र को कल्याण प्रार्थना बताया। उन्होंने कहा कि यह मंत्र मानव कल्याण से जुड़ा है, इसमें विश्व शांति की सामूहिक भावना सम्मिलित है। कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो की ओर से किया गया। महावीर जयंती का पर्व कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर शोभा यात्राएं और प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही जैन मंदिरों में अभिषेक के कार्यक्रम होंगे। महावीर जयंती के अवसर पर करौली जिले में श्री महावीर जी के कल मुख्य मेला भरेगा। सवाई माधोपुर के श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय में आज संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी है। इसका शुरूआती खर्च 1,600 करोड़ रूपये होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों और अन्य स्रोतों से सिंचाई के पानी की आपूर्ति का आधुनिकीकरण करना है।
आज एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है। इसमें बेसिकली बड़ी कैनाल से खेत में ले जाने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कच्चे कैनाल, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, उस पंप हाउस से पानी पंप किया, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसानों को मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। रेपो दर अब 6% हो गई है। आरबीआई ने 5 साल में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्त वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर 2025 2026 में 4% रहने की संभावना है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ की पवित्रता संरक्षित रहेगी। इसके साथ ही कमजोर तबके और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी। वक्फ संशोधन से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और ब्यौरा हमारी सहयोगी से।
वक्फ पीढ़ियों से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के लिए धन उपलब्ध करवाने में मददगार रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति महिला उत्तराधिकारियों को विरासत का उचित हिस्सा दिए बिना संपत्ति वक्फ यानी दान नहीं कर सकता। इसके अलावा अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की भी पहल करता है। आने वाले समय में ये सुधार मुस्लिम महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। अधिनियम में एक और बड़ा बदलाव करते हुए वक्फ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया गया है। इससे अतिक्रमण रुकेंगे और पारदर्शिता आएगी। समाचार कक्ष से सालिहा गाजी।
प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी है। हालांकि कुछ जगह झुलसाने वाली गर्मी के बाद मौसम बदला और हल्की बारिश दर्ज की गई। गंगानगर के श्रीविजयनगर में और दौसा में दोपहर में बारिश हुई, वहीं सीकर में भी कल शाम हल्की बरसात हुई। और ब्यौरा हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर से।
बाड़मेर में आज लगातार चौथे दिन पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और चूरू में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा जा रहा है। इसके अलावा अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान औसतन 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। राज्य में पड़ रही तेज गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन द्वारा लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जिला
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलवाना सरकार का मुख्य ध्येय। मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर में सरसों की एमएसपी पर खरीद का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली। 3 लाख से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी का असर जारी, श्रीगंगानगर और दौसा में हल्की बरसात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।